श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या: लौकिक मोह रूपी दलदल के तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है उसको तरने के लिए भगवान ने इस श्लोक में प्रेरणा की है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन के मन में यह श्रुति भी प्रतिपत्ति है, अर्थात सुनने से ये बात पैदा हुई है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने क्षात्र धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ क्षात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति भी प्रतिपत्ति है जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। वास्तव में जाल दो प्रकार का होता है, एक संसारी जाल और एक शास्त्रीय जाल। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत अद्वैत आदि अनेक मत मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटांग भर सूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सोमन सूत के समान है। अतः भगवान यहां ये बताते हैं कि संसारी और शास्त्री इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल नहीं, निश्चल होनी चाहिए और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है चाहे जो हो जाए। अतः भगवान शास्त्री मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इन बातों को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ है नहीं। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरती होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मुझे किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो पर जीव मैं हूं, इसमें सब एक मत है। ऐसे ही संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मुझे केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग माने परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में समत्वम योग उच्चते आदि पदों से कहा गया है। यहाँ तदा योगम अवाप्स्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बतलाई है वह योग ऐसा नहीं है कि पहले तो परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो अब नया संयोग हो गया, ऐसा नहीं है। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उनसे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग वियोग योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता, केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहां योग संज्ञा दे दी है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्मयोग, विवेक के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, और प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग। संसार में लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यमादि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। परिशिष्ट भाव, मोह के 2 विभाग है, मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह, और श्रुति भी प्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय मोह। शरीर स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह, और द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से बैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है, और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। 5वां अध्याय 4-5वां श्लोक। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य यह है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह रखना उचित नहीं। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत ही नहीं है।